नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त वैश्विक तनाव के बीच ईंधन की आपूर्ति और महंगाई पर भी विचार विमर्श हुआ। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में भाग नहीं ले सके। कैबिनेट सचिवालय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुदुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन ETF पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इससे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि इन परिवर्तन का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। यह अगले 2 महीनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और LPG तथा PNG की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 25 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हित की रक्षा करना और उद्योग तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। श्री मोदी ने यह बात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों से उत्पन्न हो रही स्थिति और भारत पर इसके संभावित प्रभाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करना था। श्री मोदी ने कहा कि देश को इसी तरह की वैश्विक बाधाओं से निपटने के लिए पहले से अनुभव है। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान दिए गए सामूहिक जवाब को याद किया, जब केंद्र और राज्य सरकार ने टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम किया था ताकि आपूर्ति श्रृंखलाएं, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस चुनौती का सामना करना एक साझा जिम्मेदारी है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए राष्ट्र इस स्थिति से सफलतापूर्वक पार पा लेगा। ईरान के हमले तेज करने के साथ पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर खतरा बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात में वायु रक्षा प्रणालियों ने आज सुबह ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 9 ड्रोनों को रोका। इसमें किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुवैत पर भी सीधा हमला हुआ है। सऊदी अरब में रक्षा प्रणालियों ने पूर्वी प्रांत के ऊपर 4 ड्रोनों को रोका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस बीच तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि LPG के 4 जहाज अब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत पहुंच चुके हैं।
ईरान के बारे में 4 जहाज हमारे वहां से आ चुके हैं और हम कई सारे खाड़ी के देशों के साथ बात कर रहे हैं ताकि और भी जो हमारे जहाज है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके सुरक्षित भारत आए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य रक्षा सेवाओं की क्षमता को बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये स्वीकृति भारतीय सेना की वायु रक्षा ट्रैकिंग प्रणाली, आर्म्ड पियर्सिंग टैग इम्यूलेशन, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन प्रणाली और रनवे एरियल निगरानी प्रणाली के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे को लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीत लिए हैं। भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम ने स्वर्ण पदक और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने ही कुल पदकों की संख्या में सुधार किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।